કાર ચલાવે ને એની હિંમત રાહ દેખાવું પડે. ये सब गीत भक्ति मार्ग के हैं. नैन इनको राह दिखाओ. वो भक्त लोग समझते हैं कि जो स्थूल अंधे हैं भगवान उनको सुलझा कर देता है, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं. इस दुनिया में तो सब अंधे हैं. ज्ञान की आंख कोई को नहीं है. वास्तव में तुम्हारे लिए इन गीतों आदि की कोई दरकार नहीं है. गीत आदि बजाने की कोई तकलीफ नहीं. भक्ति मार्ग में तो कितनी तकलीफें होती है. इतने ढेर सारे रसम रिवाज चलते हैं. ब्राह्मणों को खिलाओ, यह करो, तीर्थों आदि पर जाओ, बहुत कुछ करना होता है. यहाँ बाप आकर के सब तकलीफों छोड़वा देते हैं. इस ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करना नहीं है. मुख से शिव शिव बोलना भी नहीं है. ये भी कायदा नहीं है. फिर क्या करना है? अंदर अंदर शिव बाबा को याद करो. शिव शिव रटने से कोई फल नहीं मिलेगा. समझना है कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूँ और बाप ज्योतिबिंदु इस साकार में आया हुआ है. तो बाप कहते हैं हमको याद करो. अंतर्मुख होकर के बाप को याद करना है. बहिर्मुखता की कोई बात नहीं. बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर तुम मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप बस. ये योग अग्नि है. अग्नि में खाद भस्म हो जाती है ना, ऐसे तुम्हारी आत्मा भी कंचन थी, सोना थी. ऊपर से आने वाली कमजोर आत्माओं की खाद बढ़ती गई. त्रेता में चांदी की, द्वापर में तांबे जैसी आत्माओं की, जो कामी क्रोधी लोभी कामी क्रोधी होती है. अब कलयुग में लोभी मोही अहंकारी आत्माओं की खाद पड़ गई. मेरी योगाग्नि से ये खाद बस हो जाएंगे. जब सारे पाप भस्म हो जाएंगे तो तुम आत्मा पवित्र हो जाएंगी, ऊपर उड़ेंगी, वापस चले जाएंगे. हिस्ट्री रिपीट होनी है. ये सब बातें अपने साथ करनी होती है. अपने साथ ही रूढ़िहान करते रहो. बाप कहते हैं मैं कल कल तुमको ये युक्ति बताता हूँ. ये भी जानते हो ये ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पावेगा. ऐसे नहीं कि फट से फिल्ट्रेशन हो करके 2.5 लाख 4.5 लाख का झाड़ कंप्लीट तैयार हो जाएगा. माया का तूफान इस समय लगता है. इस संगम में जबकि मैं आकर के तुमको माया के इन बंधनों से छुड़ाता हूँ। अभी ही बंधन लगते हैं ढेर सारे, 63 जन्मों की पाप कर्म है ना, तो रील घूमती रहती है। सती में तो कोई बंधन नहीं होता। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी अभी आर्थ सहित तुम्हारी बुद्धि में है। क्या है कि पुरुषों में जो उत्तम उत्तम बनने वाली आत्माएं हैं माला के मणके, वो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर प्रत्यक्ष होते हैं। यहाँ पर हर बात अर्थ सहित होती है और भक्ति मार्ग में हर बात निरर्थक होती है। बिना अर्थ ऐसे ही बोलते रहते हैं, अनर्थ होता रहता है। ये मानी बात है, जो भी बात करेगा वो अनर्थ हो जाता है। जो देही अभिमानी होंगे वो अर्थ सहित तो बात करेंगे, अर्थ सहित तो बात का फल मिलता है। कुछ अर्थ निकलता है तो उसका फल मिलता है। अब भक्ति मार्ग में डिफिकल्टी होती है, समझते हैं कि तीर्थ यात्रा करना, ये सब करना भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। परंतु बच्चों ने अभी समझ लिया है कि भक्ति मार्ग में वापस तो कोई भी नहीं गया, भक्ति करते रहे। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक थे उनका ही 84 जन्म बता दिया, तो बाकी दूसरे फिर भक्ति करने से इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूट जाएंगे? सब आत्मा चक्र में आती है। जब सबको चक्र में आना ही है फिर कैसे के लिए कैसे कहेंगे वो सदैव कायम है, चूला कला संपूर्ण है, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये भी कलाएं नीचे गिरती है। हाँ, कृष्ण का जो नाम रूप था वो तो चला गया, बाकी आत्मा तो इस सृष्टि पर किसी न किसी रूप में होती है। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर के समझाई है, ये पढ़ाई है। स्टूडेंट लाइफ पर पूरा ध्यान देना है, रोज आना समय फिक्स करना है अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोग बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर इतना बंधन नहीं होता है, उन्होंने तो अपना काम पूरा कर लिया बस छुट्टी। व्यापारियों के पास तो कब भी ग्राहक आवे तो उनको सप्लाई करना पड़े, उनका उद्योग तो बाहर जाता है। तो बच्चों को कोशिश करके समय निकालना चाहिए, उसमें भी अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। अमृत वेले के समय बाहरी दुनियादारी के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कुछ भी याद ना आए, ताला लगाए देना चाहिए, बाप की याद रहे, चारों ओर बाप की महिमा लिख देनी चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर है, प्रकृति पावन है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलना है, क्या महिमा लिखनी है चारों ओर? और किसके चारों ओर ये महिमा लिखनी है? बाप ज्ञान का सागर है, पति के पावन है, ये सारी महिमा के किस कहाँ लिखनी है? बाप के चारों ओर लिख दे। अरे कैसे लिखेंगे? तो ब्राह्मण ने तो ज्योति बिंदु का चित्र बनाया, शिवलिंग बना दिया और चारों तरफ महिमा लिख दी। क्या क्या महिमा लिखी? ज्ञान का सागर है। अरे ज्ञान का सागर है तो बिंदु कैसे सागर होगा? बिंदु थोड़ा ही सागर बनेगा। पतितों को कैसे पावन बना देगा? बिंदु पतितों को पावन बना देगा, तो क्यों लिख दिया है बिंदु के आसपास पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, विश्व का मालिक बनाने वाला है, श्रीमत दाता है? कैसे देता है श्रीमत? जरूर कोई में प्रवेश करे तब तो मुख से श्रीमत दे, तो सभी से अच्छी मत मिलती है। वो कहते हैं मन मना भव, तू मेरे मन में समा जा, मेरे मन के अंदर जो संकल्प है उन संकल्पों में तू भी रमण कर। दूसरा तो कोई ये बात बोल न सके। क्या बात है? मैं पतित पावन हूँ, सर्व का सदृश जाता हूँ, दूसरा कोई इन बातों को बोल नहीं सकता सिवाय बिंदु को। माना जिस तने में प्रवेश करती है उसकी बिंदु रूप स्टेज बनती है तो उसके द्वारा बोलते हैं। मत मिलती है तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से खुशी होगी, बिना अर्थ याद करेंगे तो खुशी नहीं आवेगी। बाप कहते हैं अभी विचारी याद चाहिए औरों की भी साथ में याद आती रहे तो पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। जैसे अभिविचारी भक्ति होती है एक शिव की पूजा करेंगे फिर बाद में विचारी भक्ति हो जाती है तो अनेकों की भक्ति करते रहते हैं। असल है अद्वैत भक्ति। अद्वैत माना कोई दूसरा नहीं, एक की भक्ति करना, वो ही ज्ञान है। अब एक का सुनना है, अनेकों से ज्ञान सुना तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। जिसको भक्ति में याद करते हैं उसी को याद करना है, वो खुद भी आकर के समझाते हैं। ऊंची ऊंची बच्चों भक्ति का पाठ तो 2500 चलना था सो चला। पहले पहले एक शिव की तुम मंदिर शिव का ही तुम मंदिर बनाते हो, बाद में जब व्यभिचारी हो जाते हो तो अनेकों की भक्ति करते हो, अनेकों की मूर्तियां बनाते हो, अनेकों के मंदिर बनाते हो। तुम अभिचारी भक्त थे तो तुम कितने सुखी थे, द्वापर के आदि में भी सुखी थे। व्यभिचारी भक्ति हुई तो तुम कितने दुखी हो गए। व्यभिचारी बनने से द्वैत में आने पर थोड़ा थोड़ा दुख होता है। एक बाप की तो भक्ति करना अच्छा है ना, एक ही याद रहेगा। अब यहाँ तो भक्ति की बात नहीं है, वो बाप सबको सुख देने वाला है। कहते हैं मैं आकर के तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, तब तुमको सुख भासता है। ऐसे नहीं मैं आकर के चला जाऊं मंत्र देकर के, फिर तुम अपने आप सुखी होते रहेंगे। तो कहता हूं मंत्र एक का ही सुनो, यहां कोई देहधारी नहीं है मंत्र देने वाला, इस बात में मुझो नहीं। मंत्री होते हैं ना क्या करते हैं, राजा के मंत्री होते हैं क्या करते हैं, मंत्रणा देते हैं। मैं भी तुमको मंत्रणा देने आया हूं, मंत्रणा अर्थात श्रीमत, ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो, कदम कदम पर श्रीमत लेना है, पक्का करो। एक शिव बाबा को याद करना है और शिव को आना भी जरूरी है, और दूसरा कोई शरीर तो ले भी नहीं सकते, नहीं लेते दूसरा शरीर कोई नहीं लेते, एक ही लेते हैं।
दूसरा टेम्पररी
मतलब बाप के रूप में जब आते हैं तो एक ही रख लेते हैं, माँ के रूप में था तो ब्रह्म का भी रख लिया, यज्ञ की आदि में माताएं थी वो बड़ी माता थी तो बात दूसरी है। यहाँ पर तुम आते हो बाप दादा के पास, 21 मई 1967 की वाणी का दूसरा दिन, जिसके पास आते हो उससे जाती ऊंच तो दुनिया में कोई होता नहीं। याद भी सभी उनको ही करते हैं, क्योंकि वो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत में लक्ष्मीनारायण का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया, जिनकी तुम पूजा करते हो ये किसी को भी पता नहीं है कि महालक्ष्मी कौन है। महालक्ष्मी का अगला जन्म क्या था ये भी कोई जानते नहीं है। तुम जानते हो कि जगदम्बा है, तो तुम माताओं को जगदम्बा कहा जाता है, सब माताएं जगदम्बा होंगी कि एक होगी, एक होगी। क्यों कहा तुम माताओं को जगदम्बा कहा जाता है, भुजाएं हैं और भुजाओं में जो उंगलियां हैं, उंगली को पकड़ेगा बच्चा उंगली पकड़ के बोलेगा तो कहेगा कि माता की उंगली पकड़ी, क्या कहेगा?
माता को पकड़ा,
माता को पकड़ा। तो जो भी भुजाएं हैं वो सब जगदम्बा का स्वरूप है, नंबर वार पुरुषार्थ होता है। तो भारत माता भी कोई एक का नाम नहीं है। जगदम्बा भी कोई एक का नाम नहीं है, तुम सब शिव से शक्ति लेती हो और योग बल से शक्ति लेती हो। ये शक्ति लेने की बात में ही माया इंटरफियर करती है। कोई लेते हैं कोई नहीं ले पाते, फिर भी तुम्हारे युद्ध में उंगली तो लगती है ना। तो बच्चों को बहादुर होकर के लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई ने उंगली क्यों लगाई। इसने हमको उंगली लगाई तो हमको ऐसा हुआ, कोई उंगली लगाए और तुम फिर सो पड़ो, नहीं। ये तो माया का युद्ध है, ये कोई कौरवों और पांडवों की युद्ध नहीं है। उनकी तो यवनों से युद्ध है, इनकी कौरवों की युद्ध तुम पांडवों के साथ नहीं होती, इसके साथ होती है मुसलमानों के साथ। मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दो गज जमीन के कारण भी एक दूसरे का गला काट देते हैं। खेती करते हैं, उनकी जमीन काट ली, अपने खेत में मिला दी, बस लड़ाई चालू। एक दो को मार काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य, अभी तुम बच्चों को ज्ञान है कि हम रावण राज्य से अब राम राज्य में जा रहे हैं। राम राज्य में अथाह सुख है, वहां नाम ही पड़ता है सुख धम, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। जबकि बाप आए हैं बच्चों को ऐसी राजाई देते हैं तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बार बार कहता हूं कि बच्चे थक नहीं जाओ, अथक होकर याद करते रहो, कोई तकलीफ की तो बात है नहीं। मैं भी बिंदी हूं, तुम भी बिंदी हो, छोटी चीज को याद करना तो सहज होता है ना। हम बिंदी बिंदी आत्मा है, यहां पर अपना अपना पाठ बजाने आए हैं। अब पाठ तुम्हारा पूरा होता है, अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी पाप कर्म विनाश हो जाए। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं, कोई सके शरीर पर नहीं चढ़ते। शरीर तो यही खत्म हो जाता है, आत्मा अगला जन्म लेती है तो उसके पाप कर्म उसके साथ ही आत्मा के साथ ही चले जाते हैं। तो साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अगर आत्मा निर्लेप है तो शरीर छोड़ने के बाद दुख क्यों भोगती है दूसरा जन्म लेकर के? उसके पाप का लेप छेप तो है नहीं, दुख तो नहीं भोगना चाहिए। इससे साबित होता है कि आत्मा के ऊपर ही पाप पुण्य का लेप छेप चढ़ता है। तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो आपन को भी आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं। अनेक प्रकार के मत बतलाते हैं। जो भी महात्मा घर से रुचते हैं वो जाकर के आपस में कोई न कोई मठ बना देते हैं। मठ पंथ बना करके ढेरों को अपना अनुगामी बनाते हैं। तो अंधों की बिचारी जैसे कि सारा अंधे हो पड़ते हैं। अभी तुम